सेवा करते वक्त केवल कष्ट ही कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, असह्य कष्ट होता है, उसको सह नहीं सकता है। लेकिन फिर भी एक उन्नत भक्त जो है वो अपनी सेवा में इसके वजह से बाधा नहीं डाल देता। तो हमें बताने में आके ये सीखना है, क्योंकि यहां पर भगवान का जो संग हुआ था वो 10 साल के लिए, भगवान का जो वियोग था वो 100 साल के, उससे भी ज्यादा। और 100 साल में जो आनंद उन्होंने पाया उससे करोड़ों गुना अधिक उनको दुख प्राप्त हुआ, वो सेवा करते हुए विरह की भावना, जब भगवान का संग छूट गया। इसलिए कहते हैं महाप्रभु गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते भगवान। कहते हैं महाप्रभु वह सन्यासी है, वो अपने सन्यास काल में स्त्री के जूते भी देखते नहीं, स्त्री के द्वारा उपयोगित किए गए वस्तुओं को देखते भी नहीं, स्त्री की लकड़ी की कठपुतली को भी देखते नहीं, इतने वो कठोर सन्यासी। फिर भी वो क्या कहते हैं, गोपी भरत और पद कमल और दास दास दास, मैं उन गोपियों का दास हूं जो भगवान समर्पित है। और श्री कृष्ण भगवान इन गोपियों के सेवा से इतने कृतज्ञ रहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम जो मेरी सेवा कर रहे हो, जिस प्रेम से कर रहे हो, उसका मैं कोई प्रतिसाद नहीं दे सकता। आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, मैं आपकी सेवा का जो फल है या सेवा का जो प्रतिसाद है, रिस्पॉन्स है, वो नहीं कर सकता। आपको मैं कोई बदले में ले सकता नहीं, भले ही मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, अकेली भले ही मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके सेवा के बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता। अभी हकीकत में देखा जाए तो पूरा निर्माण भगवान का, तीन चौथाई आध्यात्मिक निर्माण है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और एक चौथाई भौतिक निर्माण है, वो भी अनलिमिटेड है। केवल गणित के लिए तीन चौथाई एक चौथाई का वर्णन आता है, लेकिन वैसे वास्तविक दोनों हमारे याद है, अनंत है। और इस दोनों विश्वों का जो धन दौलत है सारा भगवान का है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मान गोविंदम आदि पुरुषम तमाम प्रजा, ऐसी अनंत कोटि लक्ष्मियां जो है उनकी सेवा करते रहते। और एक सेवा, एक लक्ष्मी के एक टूटे हुए कंगन पर पूरा ब्रह्मांड का इकोनॉमिक्स चलता है। ऐसे अनंत लक्ष्मियों के स्वामी, इतने धनवान, सारे ऐश्वर्यों के स्वामी है, सारा जितना भी धन दौलत है उसके उगम स्थान है, ऐसे व्यक्ति गोपियों की प्रेम भरी सेवा के सामने कहते हैं कि मैं आपको कोई बदले में दे नहीं सकता कुछ। उनके प्रेम की उत्कटता के सामने वो असहाय हो जाते, अपने आप को दुर्बल प्राप्त करते, निर्धन दुर्बल असहाय अनुभव करते। तो प्रेम कितना और सेवा कितनी चरम सीमा की। तो उन गोपियों के सामने, उनकी सेवा के सामने भगवान भी हताश हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि आपकी सेवा में ही आप संतुष्ट रहो, क्योंकि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता उसके बदले। तो ये गोपियां जो है, जो हमेशा इस भाव में रहती है कि आश्रिष्य बा पादर काम के नश्य, अगर हम कुचल भी जाए तो भी आपके लिए हम संबंधित हैं। तो जमुना जी में उन्होंने वस्त्र चुराए उनके, तो हम तो उसको कहानी को एकदम से लाइटली पढ़ते हैं, लाइटली सुनते हैं, लाइटली समझते हैं, लेकिन जमुना जी के अंदर निर्वस्त्र थी वो सब, उनके वस्त्र जो भगवान ने चुरा ली। तो उस समय जीव गोस्वामी जी कवि करुणापुर जैसे आत्म साक्षात्कार संत जो है वर्णन करते हैं कि गोपियां एकदम असहाय थी। वो कह रही थी कि हम नंद बाबा से कंप्लेंट करेंगे आपकी, लेकिन कंप्लेंट करेंगे कैसे, नदी से बाहर निकलने के बाद तो कंप्लेंट करेंगे, नदी से बाहर निकल नहीं सकते। तो भगवान कह रहे हैं कि नंद बाबा तो बहुत बूढ़े हैं, वो क्या करेंगे मुझे, तो कहेंगे वो कम्स को जाके कंप्लेंट करेंगे, लेकिन कंप्लेंट करने के जाना पड़ेगा ना, निकल जा ही सकते नहीं। तो एक प्रकार से बिल्कुल असहाय अवस्था में थे, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि हमारे प्रियतम कृष्ण को यही मंजूर है और वो यही चाहते हैं। तो संकोच और एक तरह से असहाय अवस्था होने पर भी वो जमुना की बाहर निकल आए। तो उस समय जीव गोस्वामी जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आश्रिष्य वा पादरताम पिनश्रु, आप चाहे तो हमको लज्जित कर सकते हैं, आप चाहे तो आप संकोच में डाल सकते हैं, आप जो चाहे वो कुछ कर सकते हैं, आपको क्या करना है वो कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी इच्छा अनुसार, तब तो इच्छा को जतन, आपकी इच्छा अनुसार हम लोग प्रयास करते रहेंगे आपको संतुष्ट करें, जैसे आप चाहेंगे वैसे हम कार्य करते रहेंगे। ये गोपियों का भाव, और इस इन गोपियों के इस भाव में राधा रानी सर्वोच्च है, सर्वोच्च स्थान पर। जैसे हम अगर वो लीला सुनेंगे प्रविष्ट वन की, तो जो गोपियां तड़पते हुए पुकारते आ रही थी, भगवान नारायण का रूप धारण करके खड़े थे, रास से निकल चके चुके थे, अंतर्धान हो गए थे, और गोपियों को ऐसे ही बहलाने के लिए, मतलब उनको चीट करने के लिए, फंसाने के लिए चार भुजा वाले नारायण करके खड़े थे, और गोपियां भगवान को भूल कर, भगवान को खोकर व्याकुल होकर जा रही थी, सब पूछ रही थी, लता पदाओं को पूछ रही थी, कहां पर है हमारे नंदन नंदन। तो वो आई चतुर्भुज नारायण के पास जो रस्ते में खड़े थे, तो उनको पूछते आपने कृष्ण को कोई देखा है, अगर आपको अगर नारायण मिलेंगे रस्ते पर तो पहले आप दंडवत करेंगे, हाँ गीत गाएंगे, श्रुति के गीत गाएंगे, श्लोक गाएंगे। ये इनके मन में केवल एकाग्रता है, जैसे अर्जुन को केवल पंछी की बाएं आंख की पुतली दिखाई पड़ रही, वैसे इनका केवल मन जो है कृष्ण पर है, वो पूछते हैं लता पताओं को, फूलों को, डालियों को, सबको पूछ रहे हैं, और उनको भी पूछा कि कृष्ण कहाँ है। उन्होंने कहा इस तरफ गए, सब लोग उस तरफ भागे। ये भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि स्वयं जो हमारे नंद बाबा, यशोदा मैया, हमारे माता पिता जिस विष्णु की पूजा करते हैं, वो साक्षात खड़े रास्ते पर। और उसके लास्ट में, अंत में राजा रानी आती है। और वो, मैंने ये बात क्यों बता रहा हूं कि कैसे गोपियों में राधा रानी का भाव श्रेष्ठ है, उसमें भी राधा रानी चरम सीमा पर। तो राधा रानी एक काले रंग का भवरा जो है वो उनके साथ में मंडरा रहा है सर के, और उससे वो बात कर रहे हैं जैसे मानव कृष्ण से बात कर रही है, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों हमको अकेले छोड़ा आपने, कहाँ चले गए आप, ऐसे उनसे संवाद करते करते आ रहे हैं। और फिर वे रुकती हैं और विष्णु जी पूछती हैं कि आपने मेरे कन्हैया को ये देखा है, तो इस भाव से पूछती है, इस व्याकुलता से पूछती है कि नारायण के स्वरूप में चार भुजा धारण किए हुए कृष्ण अपनी दो भुजाएं अपनी जगह पर रख नहीं पाते, वो पिघल जाती है, दोबारा वो कृष्ण बन जाते हैं, अपने विष्णु स्वरूप को, ऐश्वर्य स्वरूप को वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। ब्रज में जो माधुर्य है, जो प्रेम है, उसके उत्कट वातावरण में वो ऐश्वर्य को कुछ देर रखना चाहते हैं, लेकिन वो रख नहीं पा रहे, स्वयं हार रहे हैं उस माधुर्य प्रेम के सामने, उनका ऐश्वर्य हार रहा है। और उनके दो हाथ पिघल जाते हैं और द्विभुजा वाले फिर कृष्ण बन जाते हैं। लेकिन वो द्विभुजा वाले कृष्ण जो है वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाते उनके प्रेम को देखकर। तो ये राधा रानी और ये गोपियां श्री गिरिराज को गौरव करते हैं कि हम सब हरिदास हैं, हम सब हरिदासियां हैं, लेकिन सब हम हरिदासियों में ये जो गोवर्धन है ये सर्वश्रेष्ठ है, हरिदास वर्य। सुंदर श्लोक भागवत में आता है, उसमें बताते हैं कि ये हरिदास जो गोवर्धन है ये पांचों रसों में भगवान की सेवा करते, सब रसों का जो लीलाएं हैं इनके सामने प्रकट होती है, और हर रस की लीलाओं में ये सेवा करते हैं। जब मोर आते हैं, गाय चरते हैं, तो भी उनको चारा देते हैं, अच्छा खास सुंदर सुगंधी उत्पन्न करते हैं। तो भगवान के दास हैं सखा थोड़े, उनके आनंद के लिए वातावरण निर्माण निर्मित करते हैं, सखाओं के लिए खेलने के लिए उपवन पेड़ आदि उत्पन्न करते हैं, माताओं के लिए हर लीला में गोपियों को मिलने के लिए अच्छी तरह से रासलीला का आयोजन करते हैं। उसमें कुंज है, कंदर है, गिरी है, उसमें गुफाएं हैं, उसमें झरना है, उसमें तालाब है, उसमें उपवन है, उसमें पुष्प है, उसमें पंछी है, सुंदर बाष्पमय शीतल वातावरण है, सुगंधी हर प्रकार का आयोजन है, उसमें रत्न है, उसमें जड़ी बूटियां हैं, तो फल फूल है, विश्राम करने की जगह है। भगवान की लीला के लिए क्या क्या चाहिए, वो हर प्रकार की व्यवस्था, शांत रस की व्यवस्था, साक्ष्य रस की व्यवस्था, दास्य रस की व्यवस्था, वात्सल्य की व्यवस्था, माधुर्य की व्यवस्था, हर प्रकार की लीला के लिए उत्तम व्यवस्था ये गिरिराज देते हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो गोवर्धन को हरिदास बन के रहे। जब कोई PhD होता है किसी विषय में और वो किसी की तारीफ करता है उस विषय में कि ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई एरा गैरा उसको तारीफ नहीं कर रहा है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो तारीफ कर रहा है, मतलब वो कितना श्रेष्ठ होगा। इस तरह से गोपियों के वर्णन से हम समझ सकते हैं कि गिरिराज गोवर्धन की स्थिति क्या होगी। ये गिरिराज गोवर्धन जब द्रोणाचल के पुत्र के रूप में हिमालय से नीचे उतरे, पुलत्स मुनि के कथा के अनुरोध में हम समझ सकते हैं कि वो वृंदावन में आगे रुके थे, सत्ययुग से रुके, इंतजार कर रहे हैं कि मेरे इष्ट कृष्ण जो हैं परम भगवान उनकी सेवा प्राप्त होगी, इंतजार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? सत्ययुग की शुरुआत से इंतजार कर रहे हैं। सत्ययुग बीतता है, 4,32,000 साल के चार गुना आप करेंगे उतना सत्ययुग है, 4,32,000 के 3 गुना गुणित करेंगे तो उतना त्रेतायुग है, 4,32,000 के अगर आप 2 बार गुणित करेंगे तो द्वापर युग है, उसके अंत के 125 साल में कृष्ण आए, तो कितने लाखों साल उन्हें इंतजार किया। तो सेवा का मैंने कल बताया, तो सबरी के उदाहरण के आधार पर कि सेवा में संयम जो है, वेटिंग, अगर आपको यस उत्तर मिलता है तो एक बात है, नो मिलता है तो दूसरी बात है, कि उत्तर मिलता है वेट, रुक जाओ थोड़ी देर रुको, तो बड़ा कठिन होता है। और भक्त का लक्षण ऐसा है कि वो जो रुक जाओ इंतजार करो, इसको भी बड़ी श्रेष्ठता से स्वीकार करते हैं। तो गोवर्धन ने इतने साल इंतजार किया, बीच में द्वापर युग आया, और द्वापर युग में हनुमान जी आए, वो ढूंढ रहे थे कोई पर्वत हो, बहुत जल्दी जल्दी सेतु बनाना है, तो आकाश में घूम रहे तो देखा तो अरे हिमालय के बीच जाने के पहले बीच में सुंदर पर्वत नजर आ रहा है, नीचे उतरते हैं, उसको उठाने का प्रयास करते हैं, उठ नहीं पाता है, फिर पूछते हैं कि आप क्यों उठा रहे हैं मुझे, तो कहते प्रभु की सेवा में उठा रहे हैं, तुरंत हल्का होकर उठ जाते हैं गिरिराज जी, और हनुमान जी उनको उठाकर आकाश में उठते हैं तो आकाशवाणी होती है कि सेतु बुरा हो गया है, अभी कोई पर्वत की जरूरत नहीं है, दोबारा उनको जाके जमीन पर रखते हैं। उस समय गिरिराज इतना रोते हैं फूट फूट कर रोते हैं, और उनका वो रोना जो है कि मुझे सेवा मिल रही थी वो फिर भी छूट गई, प्रभु की सेवा में इतने साल में इंतजार कर रहा हूं और मिलने ही वाली थी सेवा, प्रभु के दर्शन भी होने वाले थे लेकिन छूट गए, क्योंकि केवल सेतु पूरा करने का काम नहीं था, सेतु पूरा करके उस पर चल के जाके युद्ध करके सीता को छुड़ाना था, तो आगे कोई डिस्कस करने के लिए समय नहीं है, इसलिए हनुमान जी तुरंत उनको नीचे उतार के, हनुमान जी के दिल में चकित हो गए, अरे ये भी कोई भक्त है, क्या भावना है, क्या उसके हृदय का भाव है। तो हनुमान जी ने पूरा वर्णन किया ठाकुर जी को, आपका कोई भक्त था गिरिराज नाम का, गोवर्धन नाम का, क्या उसमें व्याकुलता थी कि आपकी सेवा छोड़ गई। तो भगवान जी रोने लगे, प्रभु ने कहा कि अगले अवतार में आपको संदेश देना बाद में जाकर, कि अगले अवतार में मैं आऊंगा, मेरी जो अति उत्कट लीला है वो आपके आसपास करूंगा, हर प्रकार की लीला आपके गिरी कंदरों में, आपके वपुवनों में, हर प्रकार की लीला करूंगा और आपको आनंद दूंगा, और यहां तक आनंद दूंगा कि आपको मैं मेरे सर पर धारण करूंगा 7 दिन 7 रात के लिए। तो ब्रजवासी जो है इसमें एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, तो कहते हैं कि जब वो हनुमान जी वो पर्वत को ढूंढ रहे थे तभी 7 कोस की जगह बाकी थी, और ये पर्वत जो है वो 7 कोस का था, तो 7 कोस को उठाकर 7 कोस का जो गैप था उसको पूरा करने के लिए हनुमान जी ने उनको उठाया था, लेकिन फिर नहीं हुई सेवा, इसलिए भगवान ने उनको 7 दिन 7 रात अपने सर पे उठा दिया। सरगुल्ला से बहुत सुंदर मीठा मीठा परपोट दे, मतलब भगवान ने भी उस भक्त को अपने अपने सर पे धारण किया, छत्र के रूप में अपने ऊपर धारण किया, इतना ऊंचा स्थान दिया उसको। तो आज के हमारे कथा का जो सेवा भाव का विषय है यही है, हम सब लोग ये सुनते हैं कि भगवान ने गिरिराज को उठाया, 7 दिन 7 रात ऊपर रखा, उसके नीचे बहुत मधु लीला हुई, कभी विस्तार में चर्चा करेंगे आगे उसकी, भगवान ने हर समय जो लीला की वो एक एक रस का लीला जो है वो अलग अलग समय पे है, अगर वो गोपों के साथ में तो साक्षात लीला का वर्णन हो रहा है, मतलब दर्शन हो रहा है, माता पिता के साथ में तो वात्सल्य का अनुभव कर रहे हैं, रात में गोपियों को मिल रहे तो माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं, जब मोरों को पंछियों को मिल रहे तो शांत रस का अनुभव कर रहे हैं गायों के साथ में, लेकिन कभी भी उन्होंने सब लीलाओं को साथ में नहीं किया, लेकिन गिरिराज की लीला जो है वो इतनी सुंदर लीला है कि एक गिरिराज को उठाकर वो खड़े हैं अपने शीश के ऊपर और उसके नीचे 5 रसों की लीला एक साथ हो रही है, एक साथ गायों को देख रहे हैं, उनको आनंद दे रहे हैं, एक साथ पंछी आवाज कर रहे हैं, मोर अपना आवाज कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, एक साथ सखा के साथ में लीला चल रही है, एक साथ माता पिता की लीला भी चल रही है, एक साथ गोपियों को भी आनंद दे रहे हैं, बहुत बड़ा विस्तार में वर्णन है उसका, एक साथ में 5 लीलाओं का आनंद भगवान ने एक लीला में लिया। लेकिन कोई सोचता नहीं कि उस समय गिरिराज गोवर्धन की क्या अवस्था थी, क्योंकि हम उस बारे सोचते नहीं, गिरिराज के नीचे क्या चल रहा है इसके लिए हम ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन गिरिराज को उठाने के पहले क्या हो रहा था, गिरिराज को उठाने के पहले ब्रज में जो होता है ना पिलर, अभी ये तो खंबा लगा है ना, ये तो बहुत पतला सा है, पिलर का मतलब स्तंभ जो होता है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा स्तंभ होता है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे
राम 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 हरे हरे। आवाज जरा बढ़ा लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे
राम 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 हरे हरे। जो बड़े बड़े महलों को सपोर्ट देते हैं, इतने बड़े बड़े जो पिलर होते हैं स्तंभ, वैसे एक एक बूंद आकाश से गिर रही थी, वैसे कुछ 10-15 बूंद नहीं गिर रही थी, अनंत करोड़ों बूंदे गिर रही थी आकाश से, मानो ऐसे कोई वजन आकाश से सबके ऊपर फेंका गया हो। उसमें सब ब्रजवासियों के घर बह रहे थे, उसमें गाय बछड़े भी बह रहे थे, सब संपत्ति उनकी गौशाला घर सब बह रहा था, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, अंधेरा छा गया था, सब जगह पानी की वजह से कोई प्रकाश नहीं आ रहा था, बादलों से आकाश पूरा ढक गया था। और यही स्थिति गोवर्धन की भी थी, गोवर्धन के वर्षा के कारण जो है ऐसे वर्णन आता है कि गुफाओं में शेर सिंह सब भाग के बाहर निकल गए डर के मारे, इतनी भयंकर वर्षा हो रही, सब लोग बह रहे थे उसके अंदर, तो गोवर्धन बहुत कष्ट हो रहा था, ऐसा नहीं समझो कि गोवर्धन बहुत आनंद में थे, इतना बड़ा आघात गोवर्धन सह कर सह रहे थे, फिर सब ग्वाल वालों को लेकर ब्रजवासियों को लेकर गाय बछड़ों को लेकर कृष्ण भगवान प्रविष्ट गुफा में आ गए। प्रविष्ट गुफा जो है वो गोवर्धन के बेठा गांव में है, इसमें से भगवान ने प्रवेश किया भूमि के अंदर, और गुफा के अंदर प्रवेश करके जमीन के अंदर प्रवेश करके फिर गिरिराज को उठाया। तो गिरिराज को उठाने के बाद में गिरिराज ऊपर रहे और भगवान के ऊपर कोई भी जल नहीं पड़ा, ब्रजवासियों के ऊपर जितने प्राणी थे जितने पंछी थे जितने जीव थे सब लोगों ने आश्रय लिया गिरिराज के, मतलब गिरिराज ने अपने आकार को बढ़ाया, पहले तो ब्रज में एक जगह पर था, लेकिन अगर पूरा ब्रज उनके नीचे आ जाए तो उसको आकार तो बढ़ाना पड़ेगा, तो पूरा विस्तार किया उसने अपने आप को, और सभी ब्रजवासियों को अपनी पूरी संख्या के साथ करोड़ों की संख्या थी, केवल गोपियां ही अनंत करोड़ थी, इतने ग्वाल बाल करोड़ थे, इतनी गायें करोड़ों थी, इतने जीव थे, सब उसके अंदर समा गए और अपना विस्तार किया गोवर्धन ने और भगवान को आनंद दिया, लेकिन स्वयं गिरिराज बड़ा अनंत कष्ट पा रहा था, उसके ऊपर इतनी भयंकर वर्षा हो रही थी, और ये देखकर इंद्र को और खूब खो रहा था, इंद्र और जोर से संवर्तक बादलों के माध्यम से भयंकर वर्षा कर रहा था। गिरिराज के ऊपर इतना आतंक था कि सब जानवर पेड़ सब कष्ट में थे, और इतना कष्ट होने पर भी गिरिराज ने कभी भी कोई वर्णन नहीं आता कि उन्हें संकोच किया दुख किया कष्ट का अपना प्रकट किया मुझे कष्ट हो रहा है, क्योंकि उनका भगवान के साथ भगवान के बाएं हाथ की छोटी उंगली से संपर्क बना हुआ था, उतना ही उनको काफी है। उस बाएं हाथ की छोटी उंगली के माध्यम से गिरिराज को इतना आनंद प्राप्त हो रहा था, इतना भयंकर कष्ट जो वो सह रहा था वो भी उसके सामने तुच्छ लग रहा था। तो गिरिराज को जान से हम क्या सीख सकते हैं, गिरिराज अपने आप पर इतना कष्ट झेल रहे थे भगवान को आनंद दे रहे, वो जल वो भयंकर मूसलधार वर्षा का कष्ट ब्रजवासियों को भगवान को न हो भगवान के प्रियजनों को न हो, इसलिए अकेला गिरिराज देव गोवर्धन उस सारे कष्टों को सह रहा था और सभी भगवान के भक्तों को और भगवान को उस कष्ट से मुक्ति दे रहा था, और अपना सारा जो शक्ति था वो सहन करने की वो केवल भगवान के उंगली के स्पर्श से बन गया। इसलिए हर समय हमको भगवान के साथ में संपर्क बनाए रखना चाहिए पूरी सेवा के माध्यम से, क्योंकि उस सेवा के माध्यम से ही हम सारे कष्टों को सहने की शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि कष्ट तो जीवन में आएंगे, हम सब लोग बद्ध जीव हैं, स्वतंत्र भगवान से अलग होकर हम आनंद लेना चाहते हैं, हमारे अंदर अनेक अनर्थ है, और ऐसे अनर्थों के होते हुए अगर हम तय करते हैं कि आपको भक्ति करना है, अभी दोबारा हमको भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में लौटना है, तो उस मार्ग में कष्ट होंगे ही होंगे। जब कोई बड़ा होता है ना बॉयल, कई बॉयल होते हैं, अगर उससे आपको मुक्ति चाहिए वो काटे जाएंगे ऑपरेशन में, दर्द होगा आपको, पहले भी होगा, काटते वक्त भी होगा, काटने के बाद भी होगा। अगर आपको उस बॉयल से मुक्त होना है, उस पीठ से मुक्त होना है, आपको वो दर्द सहना ही पड़ेगा, तब जाकर शुद्धि प्राप्त होगी। तो हम बिना दर्द के उस पीड़ा को मुक्त होना मुमकिन नहीं है। उसी तरह से हमारे भक्ति के जीवन में, हमारी सेवा के मार्ग में कई बाधाएं आएंगी, आपके सेवा का उत्साह नष्ट करने का माया प्रयास करेगी, क्योंकि आप जब सेवा कर रहे हैं भगवान की, इसका मतलब आप भगवान को मिलेंगे, भगवान का आपका मिलन होगा, प्रेम का अनुभव करेंगे, माया का प्रभाव छोड़कर आप भगवान की गोद में जाएंगे, तो माया प्रयास करेगी कि आपका उत्साह नष्ट हो जाए, आपका निश्चय नष्ट हो जाए, आपकी शक्ति नष्ट हो जाए, आपके पास इतना कष्ट मिले आपको कि आप सेवा ही छोड़ के भाग जाए। ब्रज में लोग आते हैं रहने के लिए, यहाँ की कड़वी गर्मी, कड़वी ठंडी, यहाँ का वातावरण, यहाँ के रोग, यहाँ की असुविधाएं, यहाँ का कष्ट इतना है कि पहले ही आदमी भाग जाता है यहाँ से। एक साल टिक जाएगा ना तीन सीजन, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा संभल पाएगा अपने आप से, ऐसे आवाज होते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर यात्रा करने को आना, कुछ दिन के लिए सेवा करने को आना बहुत अच्छा है, आसान है। रोज कथा हो रही है, रोज प्रसाद मिल रहा है, रोज सेवा मिल रही है, कुछ दिनों के लिए प्रवचन हो रहे हैं, तो बड़े छोटे से समय के लिए बहुत अच्छा उत्साह बटाकर इंटेंसली हम लोग यहाँ पर काम करके तुरंत जा सकते हैं, मम्मी में आज भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर रहने को आएंगे ना तो इतना कष्ट आपको मिलेगा, आप कहेंगे अरे यात्रा में कितना आनंद था, वो किधर गया आनंद सब, क्योंकि वो दूसरा कदम है। पहले कदम पे भगवान आपको अच्छा देते एडवर्टाइजमेंट, आ जाओ आ जाओ, वो सर्कस थी सर्कस, तो सर्कस का एडवर्टाइजमेंट था कि एक आदमी को एक बार अंदर लिया जाएगा और फ्री में होगा सर्कस, इतना बड़ा सर्कस, सबको फ्री प्रवेश मिलेगा, फ्री दर्शन मिलेगा, सर्कस का आनंद मिलेगा, एक आदमी को अंदर जाना है। सब लोग बड़े गांव के लोग सर्कस के आगे उधर लाइन लगा के, अरे वाह क्या बात है, फ्री में एकदम, वो भी एक आदमी को पूरा सर्वा सेवा करेंगे, वो एक पूरा शो एक आदमी की लाइन लगती है, मतलब क्या है एडवर्टाइजमेंट है ना वो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाइन लगा दे। एक आदमी अंदर घुसता है, एक पहलवान आता है अंदर, पहलवान, और सब उसको ऐसा पीटता है जोरदार, क्या फिर में सर्कस देखना है, आ जाओ आ जाओ, ऐसे उसका मार के उसको पूरा पूरा उसको एकदम लगदा बना देते हैं, रवि जाओ, तो खड़ा होता है तुरंत अपना कपड़ा ठीक करता है, बाल बनाता है, तो बाहर किसको पता नहीं चले अंदर क्या हुआ, बाहर आता है, आओ आज सर्कस कैसे थी, अरे बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप भी जाओ। दूसरा आदमी भी तैयार होकर अंदर जाता है, दिखता है कि पूरा मैदान खाली है, कोई हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, सिंह नहीं, कुछ नहीं, कुर्सियां भी खाली है, पूरा पटांगण भी खाली है, तो पीछे से आता है, क्या जा रहे हो, सर्कस देखने आए, अच्छा फिर चालू मुक्का मारी, फिर मिलते हैं, पूरा कचूमर निकाल लेते, फिर वो ठीक करते कपड़ा करते मारा। तो मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट बहुत लुभावना होता है, तो जब आप ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम में आते हैं ना यात्रा में, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो आपको उत्साह मिले थे, बहुत सारी व्यवस्था करी रहती ताकि आप बार बार आए। लेकिन अगर आपने तय किया कि आपको अपरवण आना है, तो फिर रियल शो चालू हो जाता। लेकिन जो उस मन की तैयारी करके आए हैं, वो रियल शो की जितनी भी कीमत है वो चुकाने को तैयार रहते। ब्रजवास जो है यहाँ पर आके बहुत लोग ऐसे पहाड़ों पर रास्ते पर ऐसे पत्थर के टुकड़े ऐसे एकत्र करके लगाते हैं, ऐसे उसका भाव यह है कि घर बनाते हैं उसका, ईंटों का और शिलाओं का, और कामना करते हैं कि यही निवास है। तो ऐसे एक मैया यहाँ पर ऐसे पहाड़ पर वो बना रही थी, इसलिए तो मुझे यहाँ पर निवास मिले। एक साधु बाबा आए, बोलते अरे इतना आसान है क्या, जितने पत्थर लग के बनाने का जितना आसान है उतना यहाँ पर रहना आसान है क्या, रह पाओगी यहाँ पर, वो भी दंग रहे उनके, क्योंकि वहाँ का यहाँ का निवास जो है वो बड़ा कष्ट वाला है। लेकिन जो व्यक्ति निश्चय करके आता है कि मुझे यहाँ पर निवास करना है, यहाँ पर रहकर सेवा करनी है, तो सारे कष्टों को जल लेता है। तो सुख मिलते हुए सेवा करना एक बात है, लेकिन जब कष्ट हो रहे हैं तभी भी सेवा करते रहना, ये दूसरी बात है। और एक एक कष्ट के साथ सेवा करते हुए जो प्राप्त होता है उसके साथ मीलों हम भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान की ओर उन्नति कर लेते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं, उनका अनुग्रह प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जब एक एक कष्ट के होते हुए जब हम कहते हैं भगवान धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सारे कष्ट जो है वो आपकी ओर से आ रहे हैं, तो मेरे अच्छे के लिए। अगर कोई पत्थर को हम लेते हैं कान से मूर्ति बनाने के लिए, और उसको पता नहीं कि उसको मूर्ति बनाई जाएगी, और उसको अगर किले से और हथौड़े से मारने लगेंगे उसको मूर्ति बनाने के लिए, तो रोएगा बहुत वो। लेकिन अगर उसको पता है ये सारे किलों के घाव सोचने के सहन करने के बाद में मेरा रूपांतर मूर्ति में होगा, और फिर बाद में मुझे पिन भी नहीं लगाया जाएगा, केवल पूजा की जाएगी, तो फूलों की माला चढ़ाई जाएगी, धन्यवाद किया जाएगा, श्रृंगार किया जाएगा, भोग लगाया जाएगा, तो वो उस आगे वाले लक्ष्य को देखते हुए सारे किलों के अनंत करोड़ों घाव जो है धन्यवाद देते हुए सहेगा, क्योंकि उसको नॉलेज है कि ये क्यों हो रहा है। मराठी में कहावत है ना कि टाकी से घाव सुसल्या शिवाय देवपण येत नाही, वो टाकी मतलब वो किला और टोड़ा, उसका घाव सहे बिना पत्थर को मूर्ति स्वरूप नहीं प्राप्त होगा, पत्थर वंदनीय पूजनीय नहीं बनता जब तक वो घाव नहीं सहता है। मुंदर मूर्ति बहुत सुंदर दिखती है हमको, लेकिन वो मूर्ति बनने के लिए उस पत्थर ने कितने करोड़ों घाव सहे होंगे तो कोई नहीं जानता है, आप तो सुंदर मूर्ति को देख रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं। वैसे ही हमारी जो आत्मा है वो ऐसे क्रूड पत्थर की तरह, उसको अनंत बार ऐसे किलों के मार लगेगी तब जाके वो भगवान के चरणों में अर्पण करने जैसी हो जाएगी, भगवान के सेवा की योग्य हो जाएगी। तो यहां पर जो भी कष्ट हो रहे हैं सेवा करते हुए, वो हमारी तैयारी कर रहे हैं, भगवान हमारी हमको ऐसा रेडी कर रहे हैं उसके लिए, ताकि उनके उनके लिए हम शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा दे सके। अभी हम जो है मिश्र सेवा कर रहे हैं, काम मिश्र सेवा, रजोगुण मिश्र सेवा, वो अलग प्रकार की सेवा होती है, मिक्स मिक्स, उनको सेवा भी करनी है और कुछ लाभ भी चाहिए, उसका प्रतिष्ठा भी चाहिए, पूजा भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत सम्मान भी मिलना चाहिए, तो ये मिश्र सेवा है। लेकिन ये मिश्र सेवा करते वक्त ऐसा नहीं कि मिश्र सेवा खराब है, बिना सेवा करने के बदले में मिश्र सेवा करना अच्छा है, कम से कम भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध तो है उसमें। तो ये जो मिश्र सेवा है इसमें हमको कष्ट होता है बहुत, क्योंकि जब हमको अड़ा बड़ा अहम है, हम सम्मान चाहते हैं, तो सम्मान नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा कष्ट होगा। तो भगवान जानबूझकर जो व्यक्ति सिंसियर है, प्रामाणिक है, भगवान की सेवा करने में प्रयास कर रहा है, उसको उसके अनर्थों को देखते हुए भगवान उसको ऐसा अनुभव देते हैं कि वो उससे मुक्त हो जाए। एक एक अनर्थों को निकालते हुए बहुत दुख होता है, जैसे हम बॉयल को काटते तो बहुत दुख होता है उससे, और पीड़ा होती है, क्योंकि भगवान उस पीड़ा को देते हैं भगवान भक्तों को, ताकि उससे वो मुक्त हो जाए और उसके आगे वाले सेवा जो है वो शुद्ध सेवा कर सके। इसलिए हम प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, शुद्ध भक्तों के संग में बैठते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि ये जो कष्ट हो रहा है ये आपके लिए अच्छे के लिए है। आप सेवा में करते हुए, हम ठाकुर भक्ति जो क्या कहते हैं कि आपकी सेवा करते हुए जो भी मुझे कष्ट हो रहा है वो मेरे लिए परम सुख का साधन है। मुझे बंगाली में वो याद नहीं आ रहा है, कहते हैं कि आपकी सेवा करते हुए जो जो कष्ट मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे लिए परम आनंद का स्रोत है, क्योंकि ऐसा आने वाला दुख जो होता है वो मेरे अंदर जो अविद्या है, जो अनर्थ है, उसका नाश कर देता है। इतनी बड़ी बात बताइए। इसलिए भक्तों को अपने जीवन में सेवा करते हुए होने वाले कष्टों को स्वीकार करना चाहिए आनंद के साथ, कृतज्ञ भावना के साथ, धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं, बुखार आता है, तो हमको इंजेक्शन लगता है, तो दर्द होता है बहुत, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो दर्द हो रहा है ये बहुत छोटा है, इसके अंदर दवा अंदर जा रही है वो तो पूरी बीमारी को नष्ट करके आगे ना सुई लगेगी, ना दर्द होगा, ना बीमारी रहेगी। तो इतने छोटे से दर्द को स्वीकार करके हम इतना बड़ा बीमारी जो है वो नष्ट कर रहे, तो फिर वो डॉक्टर के साथ लड़ाई नहीं करेगा, बच्चे की तरह बच्चा लड़ाई करेगा, हाथ पांव फोड़ेगा, रोएगा, जो जोर से 10 आदमी पकड़ेंगे उसको, उसको जानकारी नहीं है कि क्यों दिया जा रहा है उसको, लेकिन बड़े लोगों को जानकारी है कि यह सुई लगाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, इसलिए वो आराम से सह करके आने वाले उच्च प्राप्ति को देखते हुए थोड़ा सा कष्ट वो सह लेता है। तो जो बड़ा कष्ट बच्चे के लिए है, बड़े आदमी के लिए छोटा सा हो जाता है आत्म साक्षात्कार के अनुभूति के कारण। तो हम सबको सत्संग में वो अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए कि हम अगर ब्रज में सेवा करते हैं तो कष्ट जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, हमारे हृदय की शुद्धि करने के लिए भगवान कष्ट दे रहे हैं। तो गिरिराज के मन में क्या विचार है कि चाहे मैं ये कष्ट सह कर रहा हूं, इतना मुसलधार वर्षा मेरे ऊपर आघात हो रहा है, किसी पर नहीं हो रहा अभी, केवल मेरे ऊपर हो रहा है, लेकिन मेरे एक व्यक्ति के आघात सहन करने की वजह से अगर अनंत करोड़ों ब्रजवासियों को और कृष्ण भगवान को, बलराम जी को, यशोदा मैया को, नंद महाराज को, राधा रानी को अगर आनंद मिलता है, अगर वो मेरे अंदर रहकर 7 दिन 7 रात के लिए दिव्य आनंद का, पांचों लीलाओं का, रसों का आनंद ले रहे हैं, मैं जैसे ही व्यक्ति को थोड़ा कष्ट हो तो क्या प्रॉब्लम है, तो 700 दिन 700 रात रहने को तैयार थे, वो इंद्र हार गए ऊपर, इसलिए वो 7 दिन में खत्म हो गई लीला। नहीं तो भगवान ने बताया नहीं था कि गिरिराज को कि मैं आपको 7 दिन 7 रात पकड़ के रखूंगा, कि ब्रजवासी ने बाद में उसका परपोट दिया वो तो अलग है, लेकिन भगवान ने कोई ऐलान नहीं किया था कि अभी उठा रहा हूं आपको, ठीक 7 दिन 7 रात में आपकी सेवा खत्म होती है, ऐसा कोई उनको नोटिस नहीं मिली थी। वो तो जब तक वो पकड़े रहेंगे तब तक सहन करने को तैयार थे, अगर इंद्र 700 दिन भी वर्षा करता तो वो भी तैयार थे खड़े रहने के लिए, उन्होंने कहीं कंप्लेंट नहीं किया कि बाबा बहुत हो गया, अभी 3 दिन पूरे हो गए, कभी रखने वाले, इतना कष्ट हो रहा है ऊपर से मुझे, आप क्या जानते हो, आप मुरली बजा रहे हो, यहाँ पर आनंद ले रहे हो, मक्खन खा रहे हो, हाँ हम तो ऊपर कष्ट सहन कर रहे हैं, कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि गिरिराज ने कंप्लेंट किया, बोला जल्दी करो, थोड़ा इंद्र को जल्दी समझाओ, थोड़ा अकल जल्दी आने दो उसको, इतनी देर से क्यों आ रही है, अब तक उसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं। भगवान को अगर सुख मिल रहा है मेरे कष्ट सहने से तो मैं उसको सहूंगा, बड़े चाव से सहूंगा, बड़े रुचि से सहूंगा, क्योंकि मेरे प्रिय भगवान को आनंद मिल रहा है उसकी वजह से। ये भाव जो है ना, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ भाव, जो सुख में भगवान की सेवा करता है वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो दुख में सेवा करता है तो भगवान को बड़ा प्यारा हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान मिले, क्या प्रहलाद जी की सेवा का गौरव है, उनको ऐसे नहीं कि वो राजमहल में राजकुमार के रूप में लड्डू हलवा खा रहे थे, पकौड़े खा रहे थे, और आनंद में गर्म गालीचे में सो रहे थे, और गीत गाए जा रहे थे उनके लिए, और वो भगवान का नाम ले रहे थे उसके साथ में, नहीं, उनको जान से मारने का प्रयास किया गया था, हर समय तलवार से मारने का प्रयास किया गया, शस्त्र से मारने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, पहाड़ से फेंक दिया उनको, अग्नि में डालने का प्रयास किया, सांप के मुख में देने का, अनंत सांप विषैले उसके गड्ढे में डालने का प्रयास किया, हाथी के पैर के नीचे डालने का प्रयास किया, जिस जिस प्रकार से मृत्यु हो सकती है ऐसे भयंकर राक्षसों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक 5 साल के बालक को हर समय हर कदम हर क्षण मारने का प्रयास किया। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हे प्रहलाद तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया, कोई नहीं कर सकता इतना सहन, तुमने मेरे लिए केवल मेरे नाम के लिए इतना कष्ट सहन किया, अगर तुम केवल पापा को यस सर बोलते सारा कष्ट मिट जाता है ना, क्या बोल रहे थे हिरण्यकश्यपु, मेरा नाम जप ले बस, कोई विष्णु वष्णु नहीं, जप लो सब ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी अपने आप, है ना, 14 लोग पर नियंत्रण कर लिया था उसने, सारे इंद्र इंद्र को भगाकर अपने सब घर में नौकर बना दिया उसने, सबके राज्य दरबार को पादाक्रांत करके उन्होंने सारे देवताओं को जानबूझकर पानी भरने के लिए, पोछा लगाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए रखा था घर पे अपने, जानबूझकर एज अ प्लान, तो 14 लोग उसके स्वामित्व में ऑलरेडी थे। अगर प्रहलाद बोलते ना यस यस सर यस पापा, जो आप बोल रहे हो वो सही है, अपने आप वो 14 भुवन के मालिक बन जाते, लेकिन भगवान की प्रीति के लिए 14 भुवन का जो मोह था त्याग दिया उसने, वो बोल रहे थे बोलो मेरा नाम जप करो, बोल नहीं विष्णु का नाम जप करो और आप भी करो, आप मूर्ख हो क्योंकि आप उनका नाम नहीं जप रहे हो, आपकी शक्ति भी उनकी ओर से आ रही है, मेरी शक्ति और आपकी शक्ति उनकी ओर से आ रही है, वही आपकी शक्ति का उगम है, आप इस सब माया में क्यों फंसे हो, इंद्र तुति के भोग में क्यों लगे हो, आप वन में जाओ, भगवान का ध्यान करो, ऐसे बड़े विश्वास के साथ बोल रहे हैं। सामने मृत्यु खड़ी है उनके, मृत्यु का आघात उनके होने वाला है, मतलब प्रयास तो किया जा रहा है, फिर भी निर्भय होकर बोल रहे हैं। फिर मृत्यु का प्रयास चालू हो गया, फिर भी उनका ही नाम जप रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं उनको, हाँ कि तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया, तुम तो देना चाहता। बोलते मैंने कुछ कष्ट सहन ही नहीं किया, क्योंकि जब भी ये कुछ हो रहा था सब कुछ, तब मैं आपका नाम पुकार रहा था, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था। और मैंने सुना है उसके बाद में कि जब मुझे हाथी के पैर नीचे दिया गया तो हाथी ने पैर दिया ही नहीं मुझे, तो मुझे सांप के गड्ढे में डाला गया तो सांपों ने काटा ही नहीं मुझे, जो विष दिया गया वो मैं पी गया तो विष का असर ही नहीं हुआ मुझ पर, तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, सब तो आप ही ने किया है, आपने रक्षा की है मेरी। ये भक्त का भाव है। अरे मुझे पहाड़ से फेंका गया तो आपने तो फूल की तरह मुझे झेल दिया उसको नीचे, मुझे तो बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। कष्ट हो रहा है फिर भी भगवत आनंद के विचार से वो कष्ट जो है वो नगण्य, अंतक शुल्लक तुच्छ नजर आ रहा है। ये भक्तों की सेवा करने का भाव है कि उनको लगता है कि अगर भगवान को खुशी मिल रही है तो उस खुशी के सामने मेरा दुख तो है तुच्छ है, वो तो सहना ही चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए, अगर इतना सा करने से अगर भगवान को इतनी खुशी मिल रही है तो करना ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऋणी हूं आपका, कृतज्ञ हूं, कुछ देना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि अरे भगवान मुझे आप ऐसे टेम्प्ट मत करो, मुंह में मत डालो, मुझे इंद्रियों के भोग से बड़ा डर लगता है, अगर देना ही है तो बहुत उधर वाद वाद हो गया उनका, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो कुछ मांगो, वो देना चाहता हूं मैं आपको, प्रेम से देना चाहता हूं। तो कहते हैं एक ही बात कहते हैं उनको कि मुझे वैष्णवों के अपराध से बचाओ, मेरे हाथ से वैष्णवों का अपराध नहीं होना चाहिए, बहुत डर लगता है उससे, मैं किसी अन्य व्यक्ति से वस्तु से डरता नहीं हूं, मृत्यु का मुझे भय नहीं है, लेकिन वैष्णवों का अपराध हो जाए इसका भय मुझे जरूर है, तो वरदान दे दो भगवान ने, फिर वरदान दे दिया। इतना कष्ट सहने के बाद में अगर आपको पूछा जाए क्या चाहिए आपको रिवॉर्ड में, तो हम एकदम बड़ी लिस्ट बना के सप्लाई करेंगे, अरे मिल रहा है तो ले लो, अभी इतना तो किया है ना, उसका परिणाम मिल रहा है तो क्यों छोड़ो उसको, हम समझते हैं कि वो जो हमने किया उसका कोई बनता है हिसाब किताब, वो मिलना चाहिए हमको। लेकिन भक्त जो है वो निरपेक्ष, कष्ट सहने के बाद भी निरपेक्ष होता है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी प्राप्ति वो समझता है कि भगवान की खुशी यही सबसे बड़ी प्राप्ति, क्योंकि जब भगवान को वो खुश होते हुए देखता है तो अनन्य आनंद का अनुभव करता है, उस आनंद के सामने उसे अन्य कोई प्राप्ति जो है वो तुच्छ लगती है, इसलिए वो कुछ चाहता नहीं है। और डर रहता उसके मन में कि अगर मैं इन अन्य वस्तुओं के मोह में पला जाऊंगा तो ये जो आनंद मिल रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा, भगवान की खुशी का आनंद जो मुझे मिल रहा है वो नष्ट हो जाएगा और मैं वो टेम्पररी आनंद के पीछे भागने लगूंगा। इसलिए हमें गिरिराज के, प्रहलाद जी के और अन्य भक्तों के उदाहरण से समझना चाहिए कि जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं भगवान की सेवा करते समय, वो उनका हमारे लिए परम वरदान है। अगर वो हम पर प्रेम करते हैं तो हमको वो कष्ट देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा ये प्रिय जीव जो है जो मुझ पर प्रेम कर रहा है वो दोबारा इस दुनिया में न आए, और दुनिया में किसी भी मोह के चक्कर में न फंसे। अगर वो कोई ऐसा ही दिखाऊ भक्त है तो उसको बहुत पैसा देंगे, बहुत उसका ऐश्वर्य बढ़ाएंगे, बहुत कीर्ति बढ़ाएंगे, उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे, उसको इंद्रिय भोगों को दे देंगे, अनंत भोगों को, कोई बड़ा बना रहे उसके अंदर कोई बात नहीं, जो प्रेम करता है उसको उन्हें दे देंगे, परीक्षा भी करते हैं उसको देकर। जब दिए हुए भोगों को वो ना बोलता है तो भगवान को कष्ट देना आरंभ कर देते हैं उसको मुक्त करने के लिए, और उसी जानकारी की वजह से भगवान के भक्तों के अंदर वो शक्ति आ जाती है जिससे वो आने वाले कष्टों को झेल सकते हैं, निरपेक्ष बन सकते हैं, बनने का प्रयास कर सकते हैं, और जो भी कष्ट हो रहा है उसको बड़े शांति से, आनंद से, धन्यवाद देते हुए सह सकते हैं। दशम स्कंद में ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं भगवान की पश्चाताप में, तो वो कहते हैं श्लोक, प्रत्येनु कंपम सुषुमिक्ष मानो गुंजान एवात्मकम विपाकम ऋद्वाग अपूर्भिर विदधान नमस्ते। उस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करते समय जब अनंत कष्ट प्राप्त करता है और उस अनंत कष्ट में भी भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान को प्रणाम करता है और अपनी सेवा करते रहता है उस कष्ट में भी, वो हक से गौलोक धाम में प्रवेश करता है। मतलब उस पर कृपा के रूप में उसको गौलोक प्रवेश नहीं मिलता है, अधिकार से, सदाय भाग क्या मतलब है, अधिकार से वो प्रवेश करता है गौलोक धाम में। प्रवेश करना उसका हक बन जाता है, अधिकार बन जाता है उसका। तो ये अगर आप जानते हो तो आप जब सेवा में कष्ट प्राप्त करेंगे तो फिर धन्यवाद देने में चुकेंगे नहीं। और ये भी नहीं कि मुझे अभी हक से गौलोक मिलेगा, इस भाव से भी नहीं पुकारेगा भगवान को, क्योंकि जो आपके तरफ से आ रहा है वो मेरे लिए स्वीकार्य है। जस्ट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम यू आई थैंक यू, क्योंकि जो आपकी तरफ से आता है मेरे परम कल्याण के लिए होता है, इस पर मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए आपकी सेवा करते समय अगर कष्ट मिलता है मेरे लिए वो अमृत के समान। इसी भाव से ठाकुर भक्ति विनोद कह सकते हैं कि आपकी तरफ से सेवा करते हुए जो भी दुख आता है मेरे लिए परम आनंद का स्रोत है, ऐसा क्यों कह सकते हो? तो कोई कविता लिखने के लिए बैठे नहीं, वो हृदय की अनुभूति व्यक्त कर रहे हैं, उनके हृदय में क्या बात है उसको सच्चे हृदय से व्यक्त कर रहे हैं। जानते हुए किसी कष्ट के माध्यम से सारी अविद्याओं से, अनर्थों से मुक्त हो जाओ। तो गिरिराज जी की लीला में सारे वर्णन जो आते हैं वो बड़े बड़े आनंद के वर्णन आते हैं, लेकिन एक ऐसा कोना है उस लीला में कि गिरिराज ने कितना कष्ट सहन किया, और एक भगवान के उंगली के स्पर्श के माध्यम से अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति उसने प्राप्त की। तो उसी गिरिराज के दर्शन करने के लिए हम कल जाएंगे सब लोग। जो लोग अपनी सेवा समाप्त करके वापस लौटेंगे उनके लिए हम कल गिरिराज जी का दर्शन करेंगे और इसी पर चिंतन करेंगे दर्शन करते हुए। हरिदास वर्य जो श्रेष्ठतम भक्त भक्ति है, भक्त है भगवान की गोपियां, वो इनको हरिदास वर्य के रूप में वर्णन कर रही, उनका गौरव करेंगे, सर्टिफिकेट दे रही है उनको कि हम सब भी उनको मानते हैं कि ये हमारे से भी बढ़कर भक्त हैं। और वो क्या समझते हैं कि इनकी सेवा के लिए मैं यहां खड़ा हूं ताकि ये मुझ पर आकर लीला करें, भगवान को आनंद दें और उसके लिए मैं सहायता करूं असिस्टेंट के रूप में। जब कोई राजनीत करता है ना, ये सोचता नहीं कि हमारे पांव के नीचे कौन है, जमीन है कि बगीचा है कि हरियाली है, वो तो एक अस्तित्वहीन वस्तु हो जाती है, उसका कोई विचार नहीं करता है, बस प्रिया प्रीतम अपना एक दूसरे का विचार करते हैं। लेकिन जो भूमि है, जो पर्वत है, पूरे दिलो जान से अपनी सेवा वहां पर करता है ताकि भगवान के चरणों को आनंद मिले, घास भी ऐसी मुलायम हो मक्खन जैसी, वातावरण भी इतना मधुर हो, टेम्परेचर भी इतना सुंदर हो, हवा भी सुंदर इतनी बहे, पुष्प के गंध भी ऐसे सुंदरता से बहे, वो हर तरफ से उसको कोई नोटिस करे या ना करे, वो उस लीला में भगवान को आनंद मिलने के लिए पूरी सहायता करेगा कंप्लीटली, और उसका जिक्र भी नहीं किया जाएगा। अरे वाह क्या खुशबू थी, बढ़िया उस समय नहीं, वो तो आनंद मशगूल रहेगा, उनके आनंद लेने के लिए जो भी अनुकूल है वो सारी व्यवस्था जो है वो पर्वत, वो जमीन भूमि करती रहेगी। इसी तरह से आपका कैंप हो रहा है, वो हमारे सुखाओ माता जी हैं, पता नहीं वो अभी भी सेवा करती होंगी, बैठ दिन रात सेवा करती है, भोजन का समय होता भोजन के लिए टाइम नहीं, उनको तो एक हाथ में रोटी लेकर खाती रहती है, अपना सेवा चलती रहती है। वो आप लोग आते हैं, इतना बढ़िया सेवा आपके तरफ से हो रही है, उसकी पूरी योजना बनाती है, वो साल भर बनाती है, एक महीने पहले आती है और दिन रात हॉस्पिटल में रहकर पूरा प्लानिंग उसका, सब जो पिछले ईयर का फीडबैक ये सब करके एक वक्त भोजन करती है थोड़ा सा हल्का सा, और दिन रात लगी रहती है। तो यहाँ पर आकर तो कितना सोती है उनको ही मालूम है, इतना ऊपर कष्ट का परीक्षा हो रही है, कसौटियां हो रही है, हर समय नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, और आप सब लोगों को अच्छी तरह से सेवा लगाने, सेवा में लगाने के लिए हर साल नई नई योजनाएं बनाते रहती है, नया नया प्लानिंग करते रहते, हर साल अपना कैंप जो है और आगे और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से उसका सेवा करने का प्रयास जो है वो उसकी तरफ से हो रहा है। लेकिन खुद के लिए कुछ सोचने रहे कि मुझे क्या मिलेगा, मैं तो प्रभुपाद की शिष्या हूँ, मुझे तो इतना तो मिलना ही चाहिए, मेरी उम्र भी इतनी हो गई है, मैं इतनी दूर से आती हूँ, अपने खर्चे से आती हूँ, साल भर अमेरिका में मेहनत करती हूँ, पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर आ जाती हूँ, मुझे क्या मिलेगा, तो नींद भी नहीं मिलती है। लेकिन वो नहीं सोचती, वो सोचती है कि मेरे साल भर के आध्यात्मिक जीवन को चलाने के लिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा आवश्यक है वो मुझे यहां से मिल रही है, तो मैं सारा कष्ट सहने को तैयार हूं, तो साल भर के भगवान की सेवा के लिए जो भी ऊर्जा मुझे चाहिए, एनर्जी, वो मुझे प्राप्त हो रही है, आई एम थैंकफुल टू दैट। ये भक्त का भाव होता है और उसी भाव को भगवान प्रतिसाद देते हैं। कृष्णा रिस्पॉन्ड्स टू दैट कॉन्शियसनेस। वो वॉल्यूम में कितनी सेवा है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो आपका भाव जो है उसके उसके पीछे जो भाव है वही भाव आपको तारेगा। यहां पर 1000 ऑपरेशन हो गए वो नहीं आपको तारेगा, वो किस भाव से आपने किया है, किस धन्यवाद देते हुए किया है, कितना कष्ट सहते हुए किया है और उस सहते हुए कितना धन्यवाद दिया है, कितना मन में आपकी कृतज्ञ भाव है, वही भाव आपको तारेगा, क्योंकि वो भाव चिरस्थायी भाव है। ये सेवा समाप्त होगी और सेवा शुरू हो जाएगी, सेवा तो बदलती रहेगी, उसका बाह्य स्वरूप भी बदलता रहेगा, लेकिन जो भाव आप स्वीकार कर रहे हो वो आपके साथ जाएगा। ये सब सेवा, ये सब अस्पताल, ये सब दवाई, ये सब कैटरैक्ट, मृत्यु के समय जब यही छोड़ के आप जाएंगे, आपके साथ केवल जाएगा जो भाव आपने यहां पर अर्जित किया, जो प्राप्त किया, वो भाव इसका रिजल्ट है। ये भाव जो है भगवान को धन्यवाद देने का, ये भाव आपके साथ जाएगा और ये भाव आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचाएगा। इतनी शक्ति है उसके अंदर। तो उस भाव को पकड़ने के लिए, कब्जे में करने के लिए हम लोग यहां पर आए। उसका बहाना है आई कैंप का, उसका बहाना है यात्रा का, उसका बहाना है इसका उसका, जो भी हर प्रकार की योजना है बना के रखी है, आगे भी बनेगी, जमीन भी लेकर रखा है, अस्पताल भी बनेगा और आगे अलग प्रकार की सेवाएं भी होंगी, पता नहीं पोलियो का ऑपरेशन भी होगा, डिलीवरी भी होगी, बच्चों का भी इलाज होगा कैटरक्ट के साथ साथ, और आंखों के अलग अलग बीमारियों का इलाज भी होगा, सेवा बढ़ती जाएगी। लेकिन सभी इन विविध प्रकार के सेवाओं से प्राप्त क्या करना है हमको, उस भाव को, जो राधा रानी हमको बड़े प्रेम से यहां पर अपने उदाहरण से सिखा रही है, दिखा रही है। गिरिराज गोवर्धन जैसे भक्त जो है अपने उदाहरण से बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ऐसे अनन्य भक्तों का भाव जो है वो हमारे लिए प्रकट है, प्रस्तुत है हमारे लिए, ले लो उसको, नहीं तो अन्यथा जीवन में क्या प्राप्ति है, यहां के लाभ को लाके क्या करेंगे, एक दिन छूट जाएगा वो निश्चित रूप से, इसी जीवन में छूट जाएगा, तो भी लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसा लाभ प्राप्त करके फायदा क्या है, जो निश्चित रूप से आपको इसी जीवन के अंदर ही छूटेगा, और नहीं छूटेगा तो जीवन के अंत में सब कुछ छूटेगा। तो ऐसे प्राप्ति करके लाभ क्या है, पूरा जीवन समय, इतना कीमती समय ऐसे वस्तुओं को प्राप्त करने में क्यों लगाना है। ये जीवन, मनुष्य जीवन का समय जो है वो इस दिव्य भाव को स्वीकार करने के लिए, प्राप्त करने के लिए दिया गया है। अगर हम अभी आज के स्थिति में भगवान को धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं तो शायद कल नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमको आज जो हमको स्थिति भगवान ने दी है, तो जो भी कष्ट और अनुप्रतिकूलता और कोई भी असुविधा हो रही है आपको, उसमें पहले आप धन्यवाद देना सीखो, प्रयास करो, तो फिर कल निश्चित रूप से और अधिक धन्यवाद देने की घटनाएं आएंगी और कष्ट आएंगे आगे, तो फिर आप उसमें भी धन्यवाद दे सकते हो। अगर आज नहीं दे पा रहे हो तो कल भी खराब मुश्किल हो जाएगा, और आज अगर दे पा रहे हो तो कल भी शायद दे पाओगे धन्यवाद। सब लोग प्रार्थना कीजिए श्री जी से कि हमें वो धन्यवाद करने की शक्ति देना, और धन्यवाद करने के लिए वो कष्ट सहन करने की शक्ति भी देना। हम तो केवल भगवान से यही पुकारते रहते हैं कि चाहे कितना कष्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साथ साथ में हमें उन कष्ट को स्वीकार करने की शक्ति भी देना और स्वीकार करते हुए धन्यवाद करने की भावना भी देना। लेट अस प्रे टू राधा रानी दैट प्लीज गिव अस स्ट्रेंथ टू बेयर द सिचुएशंस दैट यू पुट अस अपॉन, एंड लेट अस थैंक यू फॉर व्हाटएवर यू डू फॉर अस, देन आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। It will be successful now, it will be successful tomorrow, and it will be successful forever. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आपकी सेवा को देखकर ही मुझे ये सब बताने की प्रेरणा हो रही है, इसलिए आपका भी धन्यवाद है। हरे कृष्ण।